लोगों से अच्छा बर्ताव करो, हत्ता अगर वो तुम्हारे से बहुत बुरा सलूक ही क्यों ना करें, क्योंकि ये तुम्हारा इखलाक है, क्योंकि ये तुम्हारी शख्सियत है कि तुम दूसरों से अच्छा सलूक करते हो, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हो। तो आइए ये सोचना बंद कर दें कि अगर दूसरा हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, दूसरा हमारे साथ बुरा सलूक कर रहा है, तो हम भी उसी तरह उसके साथ सलूक करें। जिस लहजे में वो हमारे से बात कर रहा है, जिस स्टाइल में वो हमारे से बात कर रहा है, हम भी उससे ऐसी ही बात करें। कोशिश करें कि हम लोग अपने सलूक को, अपने बर्ताव को, अपने इखलाक को बेहतर कर सकें। प्रोग्राम सुबह जिंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह जिंदगी में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खूबसूरत सी सुबह का आगाज कर चुके होंगे। और तेहरान स्टूडियो से आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर हैं 7:33 तेहरान टाइम के मुताबिक, ईरान टाइम के मुताबिक प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आज भी आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। मेरे सर रुबाब मौजूद हैं, सलाम अर्ज करता हूँ आपकी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने खूबसूरत से नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीदवार हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने कामों पर जा रहे होंगे और हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और इसको इंजॉय कर रहे होंगे। जी
बिल्कुल ठीक है आपने। आदाब माशरत हमारा हफ्ते का मौजूद चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन है। कल 2-3 नुकतों पर हमने बात की थी, एक और नुकता आज मैं उठाऊंगा और वो नुकता ये है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसकी आंखों में देख के बात करनी चाहिए। अगर आंखों में देख के बात ना करें तो अगला जो है वो शायद उसको बुरा लगे, ऐसा है या नहीं है?
तकरीबन है, ऐसा
सही
होना चाहिए। आप इन्हीं आंखों में देख के बात करना, एक तो कि आप उस मुखातिब की बात को कितना अहमियत दे रहे हैं, एक तो उस बंदे को इस बात का एहसास होगा, अगर ना भी दें तो आपको ये अगला बंदा ये कहीं ऐसा ना समझे कि कहीं बेएहतरामी हो रही है, उसकी बात का सुना नहीं जा रहा,
अहमियत नहीं दी
जा रही। आप उससे बात कर रहे हैं, फर्ज करो वो ऊपर देख रहा है, तो ये बुरी बात है, एक तरह से बेएहतरामी है आपके अगले सामने वाले बंदे।
ठीक है, इस चीज का भी ख्याल रखें। रुबाब ने कह दिया तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। दूसरी अगली बात जो थी, एक जो बहुत बहुत अजीब गरीब किस्म का मसला है, वो है थूक फेंकने का, हर जगह थूक फेंकने का, इसका क्या हाल है?
बहुत बुरी हरकत है,
बहुत बुरी हरकत है। अच्छा, ये इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, वो जो मुझे समझ नहीं आई आज तक, वो ये है कि अगर आप दूसरे ममालिक में जाएं तो वहां आपको ये देखने को मिलेगा कि लोगों को इस तरह, अगर मैं कहूं तो ठीक रहेगा कि थूक आती ही नहीं है, ये क्या मसला है? मुझे इस बात की समझ नहीं आई।
ऐसा नहीं है कि थूक आती नहीं है, ये गलत बात है।
शायद उनको आदत हो गई है कि भाई वो सबके सामने जो है वो,
देखिए एक बात है ना, हम लोग देख रहे हैं कि रोड पे चलता हुआ आदमी ये काम कर रहा है, बच्चा देख रहा है, बच्चा सीख जाता है इस बात को, फौरन अपने जहन में बिठा लेता है कि हाँ बड़े होके भाई मैंने भी यहाँ थूकना है, मिसाल। लेकिन अगर बचपन से ही आप वो ट्रेनिंग दे, रोडों पर यह काम ना हो, जगह जगह ऐसी चीजें छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट जब टीवी पर दिखाया जाए कि गलत है, अच्छा नहीं करना चाहिए इस तरह, तो फिर मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये आगे
रुक जाएगी थूक
आना तकरीबन।
बहरहाल इस ये जो है ये माहरीन का एक मसला है कि मुझे नहीं समझ आई इस बात की, बात करेंगे इस पर किसी ना किसी से। लेकिन हमारे पास वक्त हुआ है, हमारे पास एक खूबसूरत सी रिपोर्ट है ईरान के बारे में, ईरान की खूबसूरत और देखने वाली जगहों के बारे में, तो चलते हैं वो रिपोर्ट मुलायजा फरमाते हैं और उसके बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे, प्रोग्राम को आगे चलाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद आपको कहता हूं नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आप लोग हमारे स्टूडियो में पहुंच गए हैं। ईरान और तेहरान खास तौर पे उसकी कुछ खूबसूरत जगहें हमने आपको दिखाई, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह का जो घर है वो भी हमने आपको दिखाया, दमावंद जो एक बहुत बहुत ही खूबसूरत किस्म का पहाड़ है तेहरान के पास ही है, वो भी आपने मुलायजा फरमाया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और भी जगहें जो हैं हम ईरान तेहरान के बारे में हम आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर अतिया निषाद भी मौजूद हैं आज हिंदुस्तान से, लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारा कि हम जाएं डॉक्टर उस्मान खालिक के पास, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करें, उनके बात करने के बाद हम इंशाल्लाह दिल्ली जाएंगे। जी रुबाब
जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। जैसा खुर्रम साहब ने आपको बता दिया है कि उस्मान खालिक साहब हमारे साथ हैं, तग़ज़िये का दिन है, खाने पीने का दिन है, तो चलिए फौरन चलते हैं उनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर।
वालेकुम अस्सलाम,
बहुत बहुत खुशामदीद। डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते का मौजूद जो चल रहा था मशरूबात के बारे में, कुछ के बारे में बात कर चुके हैं, कुछ रह चुके हैं। अक्सर देखा गया है हड्डियों के मजबूती के लिए, कैल्शियम के लिए, खास चीज़ों के लिए बहुत जोर दिया जाता है दूध पीने पर, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
दूध के मुतल्लिक आपने सुना होगा कि दूध एक वाहिद चीज़ है जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि भाई ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है।
जी
लोग कह तो देते हैं, लेकिन इस ये वाकई में मुकम्मल ग़िज़ा है, और मुकम्मल ग़िज़ा ये इसलिए है क्योंकि इसमें नशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, तीनों चीज़ें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, किसी भी एक बैलेंस डाइट के, वो तमाम के तमाम इस एक खुराक के अंदर आपको मिल जाते हैं। दूसरी खुराकें मिसाल के तौर पर अगर गोश्त है, गोश्त के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते, आपको सिर्फ फैट्स और प्रोटीन्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सब्जियों और फलों की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको फैट्स नहीं मिलते, प्रोटीन्स नहीं मिलते, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो ये उस लिहाज से एक मुकम्मल गिज़ा है। बाकी ये तो बच्चों ने भी बड़ी दफ़ा सुना होता है कि भाई हड्डियां मजबूत करनी है, बड़े होना है, लंबा कद चाहिए, तो दूध पीना जो है वो जरूरी है। उसकी वजह यही है कि इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट मौजूद होती हैं हड्डियों की नशोनुमा के लिए, उनकी बनावट के लिए। ये वो मेन बुनियादी अनासर हैं जो कि चाहिए होते हैं। इसके अलावा भी हैं लेकिन ये बुनियादी चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा जो मिनरल पाया जाता है वो कैल्शियम है बेसिकली।
अच्छा, और वो दूध से मिल जाएगा हमको पूरा?
दूध से आपको बच्चों की ग्रोथ के मुताबिक, उनकी नशोनुमा और उनके स्पेसिफिक एज ग्रुप के मुताबिक, वालदैन को ये पता होना चाहिए, जो कि उनको नहीं पता होता, कि इनको कितना दूध देना चाहिए और इनकी कितनी कैल्शियम की ज़रूरत है।
अच्छा,
और ये चीज़ भी ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनिस्ट ही डिटरमिन करते हैं, डॉक्टर हज़रात को अमूमी तौर पर इन चीज़ों का बहुत मतलब कि एज के हिसाब से जो है वो इल्म नहीं होता।
अच्छा।
इसके अलावा आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ अक्सर जो है वो एक सकाफत समझ लीजिए या एक ट्रेडिशन चली आती है कि रात को सोने से पहले जो है वो दूध गर्म करके दिया जाता है,
जरूरी है पीना।
कभी किसी ने ये नहीं देखा कि इसकी वजह क्या है और ये क्यों दिया जाता है, बस एक ट्रेडिशन चली आ रही है।
सही।
पुरानी अगर आयुर्वेदी जो हिंदी मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसके अंदर ये कहा जाता है कि ये आपकी बेहतर नींद के लिए।
अच्छा।
और आपके जो दिन भर आपकी थकान हुई होती है उसको दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। वेस्टर्न मेडिसिन इस चीज़ को नहीं मानती थी, लेकिन हाल ही में जो रिसर्चेज हुई हैं उसने इस चीज़ को साबित किया है कि ना सिर्फ ये आपको बेहतरीन नींद देती है बल्कि बेहतरीन ख्वाबों का मौजिब है।
अच्छा।
इसके अलावा जो आपके दिन भर जो आप काम करते हैं उसमें बुनियादी तौर पर आपके मसल्स जो हैं वो मुसलसल सारा दिन टूट फूट का शिकार रहते हैं।
अच्छा।
जिस वक्त आप सोने के लिए जाते हैं तो इसके अंदर चूंकि प्रोटीन्स मौजूद हैं, वो प्रोटीन्स रात को जब आप जिस वक्त आराम कर रहे होते हैं उस वक्त वो जितनी भी तोड़ फोड़ हुई होती है वो उन सब को रिपेयर करते हैं।
अच्छा।
और वो दूध गर्म दूध पीने की सूरत में ही होता है, और गर्म दूध में बेहतरीन यह है कि गर्म दूध में जो है वो शक्कर मिलाकर जो है वो पिया जाए, चीनी के बजाय शक्कर ज़्यादा बेहतरीन है। और दूध को नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म करना चाहिए, नींद भी अच्छी आती है, ख्वाब भी अच्छे आते हैं। और इसके अलावा यह है कि जो हजरात दूध पीते हैं रात को गर्म दूध पीते हैं, उनका अगले दिन मूड भी अच्छा गुजरता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक किस्म के हार्मोन्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं।
अच्छा।
और ये आपका मूड अच्छा करते हैं।
चलिए, अगर हमको मूड अच्छा करना हो, अच्छे ख्वाब देखने हो, तो हम जरूर दूध पियेंगे। एक बात जो जहन में आ रही है, दूध एक है कुदरती दूध जो हमको गाय से या बकरी से मिल रहा है, एक और आजकल आपने देखा होगा टीवी पे खुश दूध मिल रहे हैं, या ये कोई फर्क है इन दोनों के लाइक अमल के बीच में जो हमारे जिस्म पे इसका अमल होता है, या नहीं दोनों ही अपना काम करते हैं अपनी जगह?
इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और असल में मैं बजाते खुद जो कंपनीज और मार्केट से दूध मिलता है उस दूध के बहुत अगेंस्ट हूँ।
अच्छा।
और ये रिसर्चेज ने भी इस चीज को साबित किया है कि वो दूध जो कि हमें मार्केट से मिलता है, कंपनी से मिलता है, खासतौर पर खुश्क दूध और जो पैस्टराइज दूध मिलता है, स्किम्ड मिल्क हो गया, ये तमाम के तमाम, ये ना सिर्फ आपको वो बेनिफिट्स नहीं देते जो कि आमतौर पर दूध के साथ मंसूब किए जाते हैं, बल्कि ये उल्टा बीमारियां पैदा करते हैं।
जी डॉक्टर साहब, इस बारे में इंशाल्लाह हम आगे गुफ्तगू चलाते हैं, चलते हैं खोटम भाई के पास, मेरे ख्याल से एक छोटा सा ब्रेक लेना है।
जी जी, छोटा सा, और उस वक्फे में हम आपको खूबसूरत सी तस्वीर और खूबसूरत सी मौसीकी सुनाएंगे। इससे पहले कि हम वक्फा लें, मैं सिर्फ ये बता दूं कि फेसबुक हमारा जो सुबह जिंदगी का सफा है वो SUT Morning Show Facebook/SUT Morning Show, यहाँ पर मेरे पास खुला पड़ा है। कोई सवाल, कोई बात, मौजू हफ्ते के मौजू के लिहाज से, किसी भी लिहाज से आपको मशवरा देना चाहना है, बात करना चाहते हैं, मुझे अभी बताएं, अभी के अभी मैं आपकी जो है बात यहाँ अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दूंगा। लेते हैं एक छोटा सा खूबसूरत सा वक्फा।
खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों ने तस्वीर मुलायजा फरमाई जहाँ पर आपने आपको ये दिखाया है कि किस तरह जो है मुख्तलिफ किस्म के काम जो है लोग कर रहे थे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगी। बहरहाल हम लोग जल्दी से वापस जाएंगे रुबाब की तरफ ताकि रुबाब प्रोग्राम को आगे चला सकें, गुफ्तगू को आगे चला सकें।
बहुत शुक्रिया खुर्रम जी। डॉक्टर साहब, खुश दूध और कुदरती दूध के बारे में बात कर रहे थे हम जी।
इसमें असल में मौजू फिर जैसा कि हमेशा होता है कि ये बहुत ही लंबा मौजू है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक अल्लग से प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा
इंशाल्लाह।
इधर एक दो और चीज़ें जो है वो इसमें ऐड करता चलूँ। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो सुबह सवेरे उठते ही खाली पेट दूध पीते हैं। अच्छा। या वैसे खाली पेट दूध पीते हैं, ये आपका निज़ाम को पूरा डिस्टर्ब करके रख देता है, क्योंकि दूध बुनियादी तौर पर आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं निज़ाम में उनको बहुत तेज़ कर देता है।
अच्छा।
अगर किसी शख्स को कब्ज हो तो उसके लिए तो ये बेहतरीन दवा है कि वो सुबह उठते साथ ही निहार मुँह दूध पी ले।
सही।
कब्ज बहुत आराम से रिलीव हो जाती है, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं रहती।
अच्छा, ठीक।
लेकिन यह है कि ऐसा जो है वो करना नहीं चाहिए। फिलहाल तो दूध के मुतालिक यही चीज थी।
सही।
मेरे ख्याल में चाय कॉफी की तरफ आ जाएं।
जी, दूध का नाम आता है तो दूध चाय की तो बात जरूर होनी चाहिए जी।
अच्छा, चाय हमारे ममालिक में पाकिस्तान हिंदुस्तान ईरान में थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जहाँ चाय की बात आती है वहाँ पर उससे मुराद वही मिल्क टी होती है। मिल्क टी ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर एक चीज बताता चलूं कि सुबह अमूमी तौर पर नाश्ते के बाद ली जाती है, नाश्ते के फौरन बाद।
सही।
उसका अपना एक बुनियादी नुकसान है कि नाश्ते में आपने जितने प्रोटीन्स खाए होते हैं, मिसाल के तौर पर अंडा अमूमी तौर पर खाया जाता है, अंडा में अच्छे खासे प्रोटीन्स हैं, वो चाय पीने की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, वो बॉडी से सिक्रीट होते हैं। मीन्स अच्छा। आपने जितने प्रोटीन्स खाए होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं।
अच्छा।
तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि नाश्ते में जब हम नाश्ता करें तो उसके साथ चाय ना लें, आधा या पौने घंटे के वक्त के बाद जो है वो हम चाय लें।
ठीक, ठीक।
इसके अलावा जो दूसरी चाय हैं जितनी भी पाकिस्तान और उस इन ममालिक में हमारे यहाँ, तो एक कॉन्सेप्ट है कि तीन चार किस्म की चाय है, कुछ हर्बल टी है, बाकी ये मिल्क टी है
जी।
असल में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आप जाएं, खास तौर पे अगर आप चीन में जाते हैं तो चीन ही की ये पैदावार है और उन्हीं की ये
इजाद है चाय।
जी बिल्कुल। वहां पर अगर आप जाएं तो आपको हजारों किस्म की चाय मिलेंगी।
सही।
और उनकी जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसन है उसमें मुख्तलिफ किस्म की चाय मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए भी जो है वो इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ किस्म की शख्सियतों के लिए मुख्तलिफ किस्म की चाय मखसूस है।
अच्छा।
मतलब कि आपकी अगर इस किस्म की शख्सियत है तो आपको इस किस्म की चाय पीनी चाहिए।
ठीक, ठीक।
और उनके अपने बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ एक बहुत बुरी आदत जो हम लोगों ने पाल लिया है, चाय के बजाते खुद बहुत अच्छे फवायद हैं, मिसाल के तौर पर ये कैंसर ट्रीटमेंट में, बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। आपके डीएनए डैमेजेस वगैरह जो हुए होते हैं जो कि बाद में कैंसर का सबब बनते हैं उनको ये रिपेयर कर सकता है। इसके अलावा आपकी स्किन में फ्रेशनेस रखता है, आपको चाको चौबंद रखता है, मूड आपके अच्छा रखता है। लेकिन हम लोग इसमें चाय के साथ क्या करते हैं कि हम लोग चीनी का इस्तेमाल भेजा करते हैं। चाय अगर आपने पीनी है तो मशवरा मेरा यही है कि चीनी बिल्कुल ही खत्म कर दी जाए, वो तो सबसे बेहतरीन है।
ठीक।
लेकिन अगर आपने लेनी है तो उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि चाय बहुत ज्यादा पी जाती है और चाय के जो फवायद होते हैं वो ज्यादा चीनी लेने की वजह से
खत्म
हो जाते हैं।
जी डॉक्टर साहब, यहाँ तक तो हमने चाय के बारे में बात की, इंशाल्लाह आगे इस गुफ्तगू को चलाते हैं, चलते खुर्रम भाई के पास।
जी बहुत शुक्रिया, और मैं भी चलूंगा अपनी जो है हमारी डिस्प्ले है उसकी तरफ
जी।
और वहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या तस्वीर आज मौजूद है। मोटापे के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था, बच्चों में बहरहाल मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे। कहा जाता है कि जो बच्चे 8 साल की उम्र से पहले मोटे होते हैं वो अपनी जवानी में, अपने यानी लड़कपन में, बुढ़ापे में भी मोटे रहते हैं। तो इसका बहुत ख्याल रखा जाए कि बचपन में बच्चों की जो डाइट है, उनका तग़ज़िया जो है, उसका ख्याल रखना चाहिए। कहा जाता है कि तकरीबन एक तिहाई बच्चे तो नहीं कहें, जवान कहेंगे, 20 साल की उम्र से छोटे जो हैं उनको कहा जाता है दुनिया में वो जो है मोटापे का शिकार हैं। और मोटापे का शिकार होने से होने का मतलब जो बताया जाता है वो ये है कि वो उनका BMI जो है, जो बहुत बार यहाँ मैंने प्रोग्राम में बताया है, BMI कद और वजन का तनासुब जिसको कहा जाता है, वो जो है तकरीबन 30 होता है। एक और जो चीज़ है, कुछ जल्दी जल्दी वजूहात में बताते चलूंगा कि क्या असल जो है वजूहात हो सकती हैं मोटापे वगैरह की। उसमें एक जो बहुत अहम चीज़ है वो यही जो हमेशा जो है डॉक्टर उस्मान खालिक भी इस पे बारे में बात करते हैं कि कैलोरी का इस्तेमाल जो है उसको हमें ज़रूर समझना चाहिए कि हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं दिन में, नापना तोलना चाहिए उसको। बेशक वो नाप तोल जो है बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट ना हो, लेकिन फिर भी उसको जो है थोड़ा बहुत नापता तोलना चाहिए, पता हो कि हम कितना ले रहे हैं। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक विरासत में भी मोटापा मिलता है, पूरी फैमिली को मिलता है, माँ बाप की तरफ से मिलता है या जो नज़दीक रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से भी मिलता है। एक और जो चीज़ बताते चलूँ वो ये है कि जो कुछ खास किस्म की दवाइयों के बारे में कहा जाता है, खास किस्म की दवाइयाँ हैं जिसमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं, डायबिटीज़ जो है ज़ियाबतीज़ की बीमार हैं वो जो दवाइयाँ खाते हैं उनको स्टीरॉइड लेने की वजह से भी और कुछ बीटा ब्लॉकर्स लेने की वजह से भी मोटापे का शिकार इंसान हो सकता है। उसके अलावा जो हमारा खाने की रूटीन है, खाने की जो हमारा स्टाइल है उसकी वजह से भी, और कहा जाता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म यानी आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो ठीक तरह काम ना करे। और आखिरी में एक जो चीज़ है वो है अगर आप बहुत कम नींद कर रहे हैं उस वजह से भी मोटापे का शिकार हो सकता है इंसान। यहाँ पर एक वक्फा लेना है, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और मौजू के साथ। जी तो नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर हो गए हैं। दूसरा मौजू जो है मेरा नज़ला ज़ुकाम और अक्सर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ इसकी अलामतों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। कुछ कहते हैं कि कुछ इनकी अलामतें आपस में मिलती जुलती हैं, तो मैं आपको अलामतों के बारे में बताऊंगा ताकि फौरी तौर पे पता चल सके कि फ्लू है या जो है फूड पॉइजनिंग है। अलबत्त फ्लू और फूड पॉइजनिंग में मुझे नहीं समझ आई कि क्या इसमें इतना जो है नज़दीक चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ अलाइम हैं जो नज़दीक हो सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि बदन दर्द अगर आपको हो रहा है, तो जैसे कि इस प्यारी सी बच्ची को जो है बदन सर में दर्द हो रहा है, तो कहा जाता है कि ये आपको फूड पॉइजनिंग में भी मिलेगा। यानी फूड पॉइजनिंग से मुराद ये है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज खा ली जिसमें बैक्टीरिया वायरस थे और आपका पेट थोड़ा बहुत खराब हो गया उसमें भी मिलेगा, और फ्लू वगैरह जो है उसमें भी मिलेगा। उसके अलावा एक जो और जो चीज़ है वो है फटीग, यानी जिसमें हमारे पास आ जाता है जैसे कि दर्द वगैरह बदन में, यानी ऐसा लगता है कि इंसान जो है वो थकावट का एहसास, फटीग अगर मैं कहूँ थकावट, दोनों में फ्लू में भी आपको नजर आएगा और फूड पॉइजनिंग में भी आपको नजर आएगा। बुखार का इम्कान हमें दोनों चीज़ों में देखने में मिलता है, फ्लू में भी देखने में मिलता है और साथ साथ जो है हमारे पास फूड पॉइजनिंग में भी देखने में मिलता है। लेकिन आप जो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं पेट से सिलसिले में, अगर पेट खराब है, उल्टी आ रही है आपको, या अगर आपको डायरिया वगैरह की शिकायत है, तो ये सिर्फ आपको फूड पॉइजनिंग में मिलेंगे, ये आपको फ्लू वगैरह में नहीं मिलेंगे। सांस वगैरह की मुश्किलात जो हैं वो भी आपको जो है वो बरक्स उल्टा अगर आप उस तरफ देखें तो वो आपको फ्लू में मिलेंगी लेकिन फूड पॉइजनिंग में नहीं मिलेंगी। चलते हैं रुबाब के पास ताकि रुबाब जो है अपनी गुफ्तगू को आगे चला सकें।
जी बहुत शुक्रिया खुरम। डॉक्टर साहब हमेशा की तरह वक्त कम है, एक या दो मिनट से ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। एनर्जी ड्रिंक एक बहुत आम सा पाया गया है, हर कोई पी रहा है और काफी सुनने में आए साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके, आप इस बारे में?
पिछले प्रोग्राम में जैसा कि मैंने आपको बताया एनर्जी ड्रिंक्स उमूमी तौर पर बल्कि खसूसी तौर पर उन लोगों के लिए बने हैं जो कि स्पोर्ट्स प्रोफेशनल होते हैं, और वो भी ये नहीं है कि जिस वक्त उन्होंने चाहा इस्तेमाल कर लिए, उनको भी उनके स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट उनकी नीड उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो ये चीज़ देते हैं। आम पब्लिक को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसको अपना मामूल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन की तादाद कॉफ़ी से भी कहीं ज़्यादा होती है।
अच्छा।
और ये आपको ना सिर्फ उसका आदी बना सकती है बल्कि बाज़ औक़ात बाज़ लोग जोश में आकर या शौक में आकर दो तीन या तीन चार जो वो एनर्जी ड्रिंक्स कट्ठे चढ़ा जाते हैं, अब वो इतना नुकसानदेह है कि उसमें आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं।
अच्छा जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हो सके तो इंशाल्लाह इस मौजू के बारे में आगे ही बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने तशरीफ लाए। जी
जी मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब के साथ जो है खुदाफिसी कहता हूँ। डॉक्टर साहब शुक्रिया आप जो प्रोग्राम में हमारे तशरीफ लाए। हमारे पास अभी एक और बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ है डॉक्टर उस्मान खालिक की, आप लोगों ने मज़ेदार मुफीद बातें सुन ली हैं लेकिन हमारी प्रोग्राम की मज़ेदार बातें और मज़ेदार चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई। हमारे पास एक ईरानी खूबसूरती मौसीकी है इस्फहानी साहब की आवाज़ में, तो चलते हैं वो मौसीकी सुनते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और फिर चलेंगे हम लोग दिल्ली। जी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं और एक खूबसूरत सी मौसीकी आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमा ली, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बहरहाल मैं आ जाऊंगा इस तरफ और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे दिल्ली स्टूडियो की तरफ जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतिया निषाद साहिबा।
जी अस्सलाम वालेकुम।
सलाम अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में।
वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने फिर हमारे प्रोग्राम में हमें टाइम दिया, हमारे नाजरीन को टाइम दिया।
वालेकुम अस्सलाम।
जी बहरहाल चलते हैं अपने जो हमारा मौजू जो क्या आज क्या आपने मौजू इंतखाब किया।
बहुत बहुत अहम मौजू है तेल की अहमियत खाने के अंदर।
सही है
कि जो हर खाना उसके बगैर नामुकम्मल होता है। तो चलते हैं डॉक्टर साहब साहिबा से इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा तेल की खाने में क्या अहमियत है और इसका हमारी सेहत से क्या ताल्लुक है?
जी बहुत ही अहम सवाल है ये कि तेल में खाने की क्या अहमियत है। उससे पहले ये मैं आपको क्लियर करूं कि जो भी हम तेल लेते हैं उससे हमें कैलोरीज कितनी मिलती है। देखिए एक ग्राम ऑयल फैट जो भी हम खाते हैं उससे हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और हम अगर एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी नशास्ता और एक ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो हमें उससे 4 और 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो यानी आप समझ लीजिए कि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिलाकर भी जितनी एनर्जी मिलती है उससे भी ज्यादा एक किलो कैलोरी एनर्जी ज्यादा मिलती है। तो आप इसकी अहमियत खुद ही समझ सकते हैं कि अगर आपने खाने में एक चम्मच भी तेल डाला है तो उससे हमें किस कदर एनर्जी मिल रही है और वो किस कदर जरूरी है हमारे जिस्म के लिए। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम एक चम्मच तेल किसी चीज में डालते हैं तो उससे हमें 5 ग्राम फैट मिलता है, यानी 5 ग्राम तेल आता है एक चम्मच में। और अगर हम एक सिंपल सा एक आम सा हम ब्रेकफास्ट जो बनाते हैं नाश्ता सुबह का और उसमें एक अंडा बनाते हैं फ्राई एग, तो उसमें भी हम आसानी से बहुत अगर हाथ दबाकर भी डालते हैं तो 3 चम्मच तेल तो जरूर डाल देते हैं या घी जिसमें भी हम बनाते हैं, यानी 15 ग्राम फैट यानी 135 किलो कैलोरी एनर्जी। अब आप ये सोचिए कि इसका हमारे जिस्म पे किस कदर गहरा असर पड़ेगा। अच्छा एक बहुत मजेदार बात यह है कि अक्सर हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं जो और मोटापे के जो शिकार होते हैं या जिनको फैट रिस्ट्रिक्टेड होता है, मना होता है कि भाई ज्यादा फैट नहीं लेना है, तो मैं उनसे पूछती हूँ भाई आप ज्यादा फैट तो नहीं खाते? तो जवाब हमेशा ही आता है नहीं नहीं हम तो नॉन स्टिक में पकाते हैं और समझ लीजिए 2 बूंद तेल में हमारा खाना बन जाता है। बहुत अच्छी बात है भाई। फिर मैं उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि भाई आपके घर में तेल महीने में आता कितना है? तो बताएंगे 6 से 7 लीटर हम रिफाइंड ऑयल लेते हैं, 2 से 3 किलो हम घी वगैरह लेते हैं और 4-5 बार बटर का पैक आता है आधा किलो वाला। अब रुबाब बहन खुर्रम भाई आप खुद जोड़िए कि ये महीने में किस कदर तेल हो गया, और अगर 3 लोग या 4 लोग खाने वाले हैं तो उससे किस कदर वो एनर्जी ले रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि उसका हमारे सेहत से किस कदर गहरा ताल्लुक है। जिस कदर हम तेल खाएंगे उस कदर ही हमें एनर्जी मिल रही है और उस कदर ही मोटापा बढ़ रहा है, और किस किस्म का तेल खा रहे हैं ये भी बहुत अहम है।
जी आपने अब यहाँ बात की हम किस किस्म का तेल खा रहे हैं। अक्सर एडवर्टाइजमेंट्स में देखा गया है फना तेल खाओ दिल के लिए अच्छा है, फना तेल खाओ फना चीज के लिए अच्छा है, तो कौन सा तेल अच्छा है कौन सा बुरा है, तो ये आप इस बारे में क्या बताएंगी हमें?
मेरे ख्याल में रुबाब बहन आपको सवाल रिपीट करना पड़ेगा।
अच्छा
मैं सुन नहीं
पाई। जी जी मैं कह रही हूँ कि अक्सर देखा गया है, अभी आपने बात की कि कौन सा तेल खाना चाहिए, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा तेल अच्छा है? एडवर्टाइजमेंट्स तो बहुत होती हैं, तेल फला है तो आपके दिल के लिए अच्छा है, फला तेल आपके पतलेपन के लिए दुबलेपन के लिए अच्छा है, तो हमें कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए?
ये बहुत ही खास बात है, एडवर्टीजमेंट का जिक्र आपने किया। आजकल तो सारे तेल ही बोलते हैं ना हार्ट फ्रेंडली ऑयल। अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसा कि हमारे इस्लामिक कंट्री में जैसे जैतून का तेल बहुत इस्तेमाल में आता है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि ये सबसे बेहतरीन तेल है। और ये बेहतरीन इसलिए क्योंकि इसमें म्यूफा बहुत ज्यादा होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जैतून के तेल के अलावा कॉर्न ऑयल एक आता है, कनोला ऑयल आता है, इसमें भी म्यूफा ज्यादा होता है और ये दोनों ही अच्छे हैं, तीनों ही अच्छे हैं। और अगर हम प्यूफा की बात करते हैं यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके लिए सनफ्लावर ऑयल आता है, सैफ्लावर ऑयल आता है, उसमें म्यूफा बहुत ज्यादा होता है। और आजकल एक बाजार में राइस ब्रैन ऑयल बहुत ही आम हो गया है, वो भी म्यूफा में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम खाएं कौन सा तेल, प्यूफा किसी में ज्यादा अच्छा है किसी में म्यूफा अच्छा है और ये वो हर तरीके की बातें रहती हैं इसमें, तो अब बेहतरीन तेल कौन सा है? तो बेहतरीन तेल ये है जिसमें हमें थोड़ा सा म्यूफा भी मिले, थोड़ा सा प्यूफा भी मिले। यानी इस तरह से कर लीजिए कि जैसे आप दोपहर का खाना आपने जैतून के तेल में बना लिया और रात का खाना आपने सूरजमुखी के तेल में बना लिया, सनफ्लावर ऑयल में बना लिया, तो आपको म्यूफा भी मिल रहा है और प्यूफा भी मिल रहा है। या जैसे राइस ब्रान ऑयल अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो एक ऐसा तेल है जिसमें दोनों की मकदार थोड़ी बेहतर क्वांटिटी में है, यानी सिर्फ उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफी बेहतर है। लेकिन यहां पर मैं ये बात जरूर बताती चलूं कि अगर ऑलिव ऑयल में म्यूफा है या कॉर्न ऑयल में म्यूफा है या सनफ्लावर ऑयल में प्यूफा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जितने मर्जी इस्तेमाल कर सकें। अगर ऑलिव ऑयल भी हम एक चम्मच खा रहे हैं यानी 5 ग्राम खा रहे हैं, तो उससे भी हमें 45 किलो कैलोरी ही एनर्जी मिलेगी, जो कि जाहिर सी बात है अगर हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो हमें मोटापे की तरफ ले जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि प्यूफा और म्यूफा से हमें उतना नुकसान नहीं है जितना हमें सैचुरेटेड फैट से नुकसान होता है। सैचुरेटेड फैट में यहाँ पे ये जरूर बता दूं कि बहुत आसान है हमें फर्क करना, जो कि रूम टेम्परेचर यानी कमरे की हरारत पे जो सॉलिड रहे यानी जमा हुआ रहे वो सैचुरेटेड फैट होता है, यानी घी। और आजकल वनस्पति घी बाजार में आ रहा है जो घी से भी ज्यादा खतरनाक है, डालडा वगैरह, वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। तो उसको तो बिल्कुल ही हमें इस्तेमाल ही नहीं करना है। और अगर हमें जो हार्ट फ्रेंडली तेल जैसे कि राइस ब्रैन ऑयल वगैरह है उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका भी मकदार हमें सारा दिन में कहते हैं कि जैसे उससे 700 से 800 किलो कैलोरी के ऊपर हमें तेल से नहीं खानी चाहिए सारा दिन में, चाहे आप 2500 किलो कैलोरी खा रहे हो। और वो सिर्फ तेल ही नहीं है, हमारे खाने में जैसे हमने गोश्त खाया तो उसमें जैसे अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि उसमें भी फैट होता है, तो वो बिल्कुल उसमें फैट होता है, तो उस फैट को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। अगर हमने गोश्त खाया है तो हमें अपना विजिबल फैट यानी जो फैट हम डालते हैं ऊपर से खाने में उसको कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें फैट को बैलेंस करके बेहतर फैट जिसमें प्यूफा और म्यूफा ज्यादा हो और सैचुरेटेड फैट बहुत कम हो वो इस्तेमाल करना होगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, खाने के तेल जो हम लोग घर में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या बदन का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है?
ये बहुत खास सवाल है खुर्रम साहब। आजकल आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये बहुत ही गलत एडवर्टीजमेंट है और मुझे नहीं पता कि लोग इसको स्यू क्यों नहीं करते। कोलेस्ट्रॉल कभी भी वेजिटेबल सोर्स में नहीं हो सकता, यानी जो सब्जियों से या जो जमीन में उगती हैं चीजें, अगर उससे तेल निकल रहा है, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो मूंगफली का तेल हो या ऑलिव ऑयल हो यानी जैतून का तेल हो, उसमें हरगिज कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता। और कंपनियां बहुत बड़ा बड़ा दावा करती हैं जीरो कोलेस्ट्रॉल, अरे वो जीरो कोलेस्ट्रॉल ही होगा क्योंकि उसमें सरसों सब्जियों का तेल है। वो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्स से ही आता है, यानी जैसे अंडा हो गया,
ठीक है,
या जो आप घी निकालते हैं दूध से, या बाजार में जो गाय या भैंस का के दूध से बना हुआ घी मिलता है, सिर्फ उसमें ही हमें कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है,
ठीक है।
तो खाने के तेल से कोलेस्ट्रॉल का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है अंटिल एंड अनलेस आप ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं। और नॉन वेजिटेरियन में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ऑर्गन मीट से आता है, जैसे हम भेजा वगैरह हमारे घरों में बहुत बनता है, तो भेजे में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके बाद आता है अंडा। लेकिन अंडे की खास बात है कि अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी सफेदी में बिल्कुल नहीं होता। और उसकी सफेदी में एक कॉम्पोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं लेसिथिन, और लेसिथिन एंटी कोलेस्ट्रिक होता है। मजे की बात ये कि अगर आप पूरा अंडा खा रहे हैं जर्दी और सफेदी दोनों, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल और एंटी कोलेस्ट्रिक अल्लाह ताला ने पहले ही डाल रखा है। तो मजे से अंडा खाइए, कोई परेशानी की बात
अच्छा,
नहीं है। और अगर आप सब्जियों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता,
नहीं
सिर्फ एनिमल सोर्स से ही कोलेस्ट्रॉल आता है।
डॉक्टर साहब, मुख्तसर सा बताइएगा कि क्या मोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं जो तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे? क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में माशाल्लाह तेल जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में, उसको बार बार इस्तेमाल करना, उसका वो जब तक वो कोयले की तरह काला नहीं हो जाता उस टाइम तक उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी फर्क नहीं पता कि फ्राइंग वाला तेल कौन सा है और खाने पकाने वाला तेल कौन सा है। इसके बारे में थोड़ी सी मोटी बीमारियां जो हैं वो होती हैं वो तर बता दें हमारे नाजरीन को।
खुर्रम साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मोटापे का, वो भी बच्चों में, तो जो तेल से पहली सबसे पहली बीमारी है वो तो मोटापा ही है। और
है।
हमारे घरों में ये बहुत देखा जाता है कि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें समझा जाता है कि उन्हें बहुत सी एनर्जी चाहिए और उन्हें बड़े होना है तो उनको तेल खिलाओ, तो ये बहुत ही गलत बात है। सबसे ज्यादा परेशानी तेल से तो मोटापे की है। दूसरी बात, आपने जिक्र किया तेल को दोबारा गर्म करने का, ये बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है। देखिए, तेल को जब, एक चीज आपने सुनी होगी ट्रांस फैटी एसिड,
जी जी
तो
बिल्कुल
ट्रांस फैटी एसिड कुदरती तौर पे पाई नहीं जाती, ये बनती है तेल में, और वो तभी बनती है जब हम तेल को रीहीट करते हैं, यानी दोबारा गर्म करते हैं।
ठीक है,
जितनी बार आप तेल को दोबारा गर्म करेंगे आप उतना ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड कंटेंट तेल का बढ़ाते जाएंगे, और ट्रांस फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा तेजी से हमारी आर्टरीज में जमा होती है। कोलेस्ट्रॉल की यही प्रॉब्लम है कि वो हमारी आर्टरीज में जमा होती है और हमें दिल की बीमारी कर सकती है।
ठीक है,
तो ट्रांस फैटी एसिड उससे भी ज्यादा तेजी से हमारे आर्टरीज में जमा होती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस कदर खतरनाक है। और तेल से मोटापे के अलावा दिल की बीमारी बहुत ज्यादा आम है, यहां तक कि अगर हम अच्छा तेल इस्तेमाल करते हैं तो दिल की बीमारी को रोक भी सकते हैं, इस कदर गहरा ताल्लुक है। उसके बाद बहुत सी ऐसी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, जो कि किसी न तरह दिल की बीमारी और मोटापे से ही जुड़ी हुई है, लेकिन सीधे तौर पर भी हम ये कह सकते हैं कि वो तेल की वजह से ही होती है। तो ये तीन बीमारियां ऐसी हैं जो खराब तेल या ज्यादा तेल खाने से या तेल को बार बार हीट करने से बहुत ज्यादा आम है और बहुत आसानी से हो सकती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अतिया साहिबा, आपने बड़ी जबरदस्त और मुफीद बातें बताई, इंशाल्लाह नाज़रीन को बहुत बहुत पसंद आई होंगी हमारी आपकी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपसे इजाजत चाहते हैं।
जी बिल्कुल, बहरहाल हमारे नाज़रीन को भी उम्मीद करता हूँ कि उनको भी जो है हमारी जो डॉक्टर अतिया निषाद जो हमने दिल्ली से जिनको दावत दी थी प्रोग्राम में, उनकी गुफ्तगू पसंद आई होगी। बहरहाल हमारे पास यहाँ पर एक वक्त हुआ है एक खूबसूरत सी मौसीकी का, मौसीकी सुनेंगे, उसके बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे और फिर आगे प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। जी प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको कहता हूँ, मौसीकी आप लोगों ने मुलाजत फरमाई, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमारे पास हमारे डायरेक्टर साहब बता रही हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे एक व्यूअर मौजूद हैं, सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में।
अलैकुम अस्सलाम
जी, आप अपना नाम बताएंगी और बताएंगी कहाँ से बात कर रही हैं?
मेरा नाम रोया चायवादी है और मैं चेहरान साहब से बात कर रही हूँ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया रोया, और बहुत खुश आमदीद आपको कहता हूँ प्रोग्राम में। रोया, हमारा जो मौजू चल रहा है हफ्ते का वो है आदाब माशरत, मुख्तलिफ किस्म की चीजें इसमें आ जाती हैं, आप किस खास मौजू पे नजर डालना चाहेंगी?
हाँ, मैं सबसे पहले माशरती आदाब का मफहूम आपसे पेश करना चाहती
हूँ। जी जरूर जरूर।
माशरती आदाब का मफहूम रहने सहने का अच्छे तरीका है, खुद अच्छी आदत अपनाना, दूसरों के आराम सहूलत का ख्याल रखना, खुद गरज ना होना, दूसरों के हकूक का लिहाज रखना और अपने किसी अमल से दूसरों को दुख ना देना। और हमारे नबी अकरम ने इस मौजू के बारे में यूँ फरमाया है कि अपने घर की दीवार इतनी ऊंची ना किया करो कि हमसाये की हवा रोशनी रुक जाए। सफर के दौरान में दूसरों के दुख सुख का ख्याल रखो और वालदेन की खिदमत में कोई कसर उठा ना रखो, मेहनत मशक्कत को अपना शौर बनाओ और सब्र तहम्मुल से मुश्किलात का सामना करो, नाप तोल में कमी ना करो, मीठी और शाइस्ता बात किया करो, वादा पूरा करो और किसी को हकीर ना जानो।
सही रोया, आपने जो है तकरीबन मेरे ख्याल में सारी जो आदाब माशरत हमारी जिंदगी में है उनको तो बता दिया हमारे नाजरीन को, लेकिन सिर्फ ये भी साथ साथ बताएं कि बहुत से लोगों को इनको इनके बारे में पता है लेकिन शायद कुछ वजूहात की वजह से इन पे अमल नहीं कर पाते, क्या वजह है आपके ख्याल में?
मेरे ख्याल में शायद वो जानते हैं लेकिन खास
पता नहीं नजर आई। बिल्कुल, बहरहाल हर किसी के सामने साथ ये मसला है कि इंसान को पता होता है चीजों का लेकिन हमेशा जो है ये जहन में सवाल उठता है कि यार मुझे तो पता है इन चीजों का लेकिन उसके बावजूद भी क्यों मैं इस पे अमल नहीं कर पाया, शायद माहौल ऐसा है, शायद आसपास के लोग ऐसे हैं इसकी वजह से। बहरहाल बहुत शुक्रिया रोया साहब, आपने कॉल किया हमारे प्रोग्राम में और मुख्तसर और मुफीद तौर पे जो है आदाब माशरत के बारे में हमारे नाजिम को बताया, बहुत शुक्रिया। हमें इसी तरह कॉल करते रहिएगा, हमारा प्रोग्राम भी देखते रहिएगा, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया,
जी अल्लाह हाफिज। जी तो बहरहाल जैसे कि रोया साहब ने जो है बताई मुख्तलिफ चीजें, कुछ चीजें मैं भी जो है लिख के लाया था जिसमें मैंने एक तो बात की कि आंखों में देख के बात करनी चाहिए, और आंखों देख में बात करने का मतलब ये नहीं है कि आंखें दिखानी चाहिए किसी को,
घूरना चाहिए।
जी आंखों देख के मुराद ये कि जो है अदब व एहतराम करना चाहिए जो आपके साथ बात करा। उसके अलावा थूक फेंकने की बात की, छींक की बात की, छींक के बारे में ये बताता चलूं कि जब भी छींक आए कोशिश करें हाथ अपने आगे लेके आए, लेकिन मेडिकल के नुक्ते नजर से ये कहा जाता है कि हाथ ना सामने लेके आए, अपना बाजू जो है उसको सामने लेके
आए, सामने लेके आए, या आप जैसा कोई आपके सामने बैठा अपना मुंह उस तरफ कर
बिल्कुल, बिल्कुल
तो बहुत अच्छा रहेगा, इस तरह ना उस पर भी एहतरामी होगी ना आपकी खुद की इज्जत अपने हाथ में ही रहेगी, अच्छी बात है।
टेबल पे बैठना, जब आप टेबल पे बैठते हैं खाना पीना खा रहे होते हैं वो बहुत जरूरी है, उसमें आपको बहुत सी चीजों का ख्याल रखना है, मुंह बंद करके खाना होता है। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोगों को शायद मालूम हो, लेकिन कभी कभार जो है यादावरी की हमें भी जरूरत होती है, आप लोगों की जरूरत होती है, सबको जरूरत होती है। तो मुंह बंद करके खाना, फिर मुंह में खाना हो तो बात ना करना, फिर ये है कि
ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि आप खाना खाते वक्त बात ही ना करें,
क्योंकि हवा अंदर चल जाती है। और कहते हैं कि अक्सर जो है पेट के मसाइल इस वजह से भी पेश आते हैं कि अगर आप खाते हुए बोलेंगे तो हवा जो है आपके खाने के साथ अंदर चल जाती है। पर मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई, मेडिकल साइंस में है ये बात, लेकिन समझ नहीं आई आज तक ये ऐसा है तो है पर ये चीज है। उसके बाद जो है खाने के में जब आप बैठते हैं तो इंतजार करें कि सारे आ जाएं तो दूसरों का, अगर आपके पास कोई डिश पड़ी है तो दूसरों तक पहुंचाएं उसको, ये नहीं कि अपने लिए डाल ली और उसके बाद जो है शुरू कर लिया, सर नीचे कर लिया और खाना शुरू कर दिया, ये चीज है। और उसके अलावा एक बहुत अहम चीज है, वो ये है कि इस बात पर जरूर गौर करें कि दूसरों का मजाक उड़ा के इंसान को जो जो खुशी मिलती है वो कोई सही चीज नहीं है। आजकल एक बड़ा फैशन सा आ गया है यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल वगैरह में मजाक उड़ाया, जी हाँ जी तुम्हारी ये चीज और फलां ये वो, किसी ने कोई बैग
किसी ने कोई नुक्ता जर्फ
नजर आ गया बस ढूंढ लिया,
उसको पकड़ लिया आपने।
तो क्यों, हमारे पास क्या मजेदार चीजों की कमी हो गई है, मजेदार अच्छी अच्छी बातों की क्या कमी हो गई है? हंसने खेलने की बहुत सी बातें हैं, ऐसे लतीफे इतने मजे मजे के होते हैं, तो क्या उनकी हमारे पास कमी है? ठीक है लतीफे जो है वो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं पुराना हो गया, लेकिन फिर भी बारह जी चीजें हैं। टाइम हमारा इख्तिताम पे पहुंच गया, उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम जो है आपको पसंद आया होगा।
जी मैं जल्दी से बताती चलूं नाज़रीन, सनीचर का जो हमारा दिन का जो मौजू होगा घरेलू मयशियत होगा, और हमारे साथ जनाब अब्बास कली साहब होंगे जी, वो होंगे। और हफ्ते का जो पूरा मौजू चलने वाला है
वो मैं बताऊंगा,
चले आप बताइए
जी। तजर्बा है बिल्कुल, तजर्बा और तजर्बा
जिंदगी की हर मोड़ पर जो आपका तजर्बा है
बहुत जरूरी, बहुत मजे का मौजू है। आप लोग जरूर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे, परसों के लिए मुझे और रुबाब को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।